आज की बात। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज हम भारत में अफवाहों पर भीड़ द्वारा पीट पीट कर जान से मार देने या मॉब लिंचिंग की समस्या पर चर्चा जारी रखेंगे। भारत में कथित गोरक्षकों की मॉब लिंचिंग से 50 लोगों और बच्चा चोरी की अफवाहों से 30 लोगों की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों की रोकथाम, सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाइयों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटना होने पर राज्य सरकारें तुरंत FIR, जल्द जाँच और चार्जशीट, 6 महीने में मुकदमे के ट्रायल, अपराधियों को अधिकतम सजा, गवाहों की सुरक्षा, लापरवाह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई, पीड़ितों को त्वरित मुआवजा जैसे कदम उठाएं। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि मॉब लिंचिंग के मामलों में सरकारें आंख और कान बंद करके नहीं बैठ सकती, जिसका अर्थ यही निकलता है कि कोर्ट की नज़र में इस तरह के मामलों के लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं। विडंबना देखिए कि उच्चतम न्यायालय के इस दिशा निर्देश के तुरंत बाद बंधुआ मजदूरों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर झारखंड के पाकुड़ क्षेत्र में भीड़ ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि हमला भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया, हालांकि भाजपा इससे इनकार करती है। इससे पहले अलवर में गाय की तस्करी के शक में एक व्यक्ति को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया था। अफसोस की बात तो यह है कि भाजपा के कुछ नेता मॉब लिंचिंग का परोक्ष रूप से समर्थन करते नजर आते हैं। अलवर की घटना पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वे इस घटना की निंदा करते हैं, लेकिन ये सिर्फ अकेली घटना नहीं है और हमें इसके इतिहास में जाना होगा और जानना होगा कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने सन 1984 के सिख विरोधी दंगों को इतिहास की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग बताया।
मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन ये अकेली घटना नहीं है, इसको आपको पीछे इतिहास से जाना पड़ेगा। ये क्यों होती है, इसको रोकना चाहिए, इसके लिए कुछ सुझाव दीजिए। क्या 1984 में सिखों के साथ हुआ इस देश के इतिहास की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग थी? जैसे जैसे मोदी जी पॉपुलर होते जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं इस देश में आती रहेगी। जैसे बिहार का चुनाव हुआ, अवार्ड वापसी, यूपी का चुनाव आएगा, मॉब लिंचिंग आएगा, 19 का चुनाव आ रहा, फिर कुछ आएगा, कभी इंटॉलरेंस आएगा। ये मोदी जी ने जो योजनाएं दी और उसका असर धरातल पर दिख रहा है, उसका एक रिएक्शन है।
हालांकि भाजपा के ही एक अन्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अपराधी अपराधी होता है और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार इस प्रकार की कार्रवाई कर भी रही है।
क्रिमिनलिज्म का जो जामा पहनाने की कोशिश होती है, उससे इस तरह के क्रिमिनल्स को के जो क्राइम है उसको जो है वो मदद मिलती है, सुरक्षा मिलती है। इसलिए हमारा मानना है कि जो क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत प्रोसेस उन कार्रवाई होनी चाहिए और हुई भी है।
कांग्रेस पार्टी के नसीम खान कहते हैं कि विभिन्न अदालतों के आदेशों के बावजूद मोदी सरकार मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है।
देश की सर्वोच्च न्यायालय, राज्य की न्यायालय इस तरह से काफ़ी दिनों से इस तरह का आदेश और केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके बावजूद मोदी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। आम आदमी तो जाने दीजिए, गौरक्षा के नाम पर आम आदमी को उकसाकर भड़काकर भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो सहयोगी संस्थाएं हैं जिस तरह से बेगुनाह लोगों की देश भर में हत्याएं कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो जगजाहिर हुआ है। कितने वाक्य इस देश में पिछले 2 साल में घटे हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सांसद मजीद मेमन का कहना है कि मॉब लिंचिंग सभ्य समाज के लिए अत्यंत शर्मनाक बात है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया है कि इस पर कानून बनना चाहिए, स्पेशल कानून। अब वो मुझे लगता है पार्लियामेंट में एक स्पेशल कानून होना चाहिए। मैंने खुद अपने पार्लियामेंट के राज्यसभा के भाषण में पिछले सेशन में ये बात कही थी कि मॉब लिंचिंग इज़ अ ग्रेवेस्ट क्राइम, सबसे यानी हमारी सिविल सोसाइटी के लिए एक शर्मनाक बात है।
समाजवादी पार्टी के सुनील यादव ने उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का स्वागत करते हुए इसे केंद्र सरकार के मुंह पर एक तमाचे की संज्ञा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कहा है उसको पूरा देश स्वागत कर रहा है। ये सरकार पर, केंद्र सरकार पर एक करारा तमाचा भी है और इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने का एक ये नई पहल है जिससे इस देश की डेमोक्रेसी बच जाएगी।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि मोदी सरकार ने अहम मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भीड़ तंत्र को भेड़िया तंत्र बना दिया है।
मोदी सरकार ने भयावह भीड़ तंत्र को अफवाहों के सहारे कत्लो गैरत का भेड़िया तंत्र बना दिया है। उन्होंने सरेआम निर्दोष लोगों को मारने का भीड़ तंत्र को लाइसेंस दे रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वो लाइसेंस खारिज हो गया। भीड़ तंत्र का उन्माद देश की बुनियादी समस्याओं से देश का ध्यान भटकाने के लिए है। मोदी सरकार की विफलताओं से देश का ध्यान भटकाने के लिए है।
भाजपा की सहयोगी और चरमपंथी पार्टी शिवसेना की नीलम गोहे भी अफवाहों के चलते भीड़ के हाथों लोगों की हत्या की निंदा करती हैं और कहती हैं कि सरकार को इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए कि मॉब लिंचिंग करने वाले ये समझ जाएं कि उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।
महाराष्ट्र में हर जगह पे अफवाह फैल रही है तो मुझे लगता है कि लोगों का एहसास दिलाना, उनका विश्वास बढ़ाना बहुत जरूरी है और लोगों को भी पता होना चाहिए कि वो कानून हाथ में इस तरीके से लेंगे तो उनको भी वो सजा भुगतनी पड़ती है।
कांग्रेस के राशिद अलवी का कहना है कि मॉब लिंचिंग में भीड़ तो दोषी है ही, लेकिन उससे भी अधिक दोषी वे हैं जिन्होंने देश में ये माहौल पैदा किया है।
जो लोग अफवाहों पर लोगों को मार रहे हैं वो गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा गुनाहगार वो लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर ये माहौल पैदा किया।
उच्चतम न्यायालय ने भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या करने की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उसके दिशा निर्देश पर कड़ाई से अमल किया जाएगा और केंद्र व राज्य सरकारें अपने दायित्वों का सही तरीके से पालन करेंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आशा की किरण बताते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसके पालन का उन्हें विश्वास नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो पहले भी इस तरह के आदेश रहे हैं वही एक तमाम कमज़ोर लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण नज़र आते हैं। अब देखना है कि हुकूमत कितना उस पर अमल करती है।
सुन्नी धर्मगुरु गुलजार आजमी इस कानून को लागू करने के संबंध में कुछ प्रस्ताव पेश करते हैं।
अब हम दोनों से ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों कानून इस तरीके से बनाइए कि पहले तो ये कि कैसे रोका जाए, उसके बाद ये कि अगर हो जाए तो क्या मामलात किए जाएँ, और उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि आइंदा के लिए उस शख्स के लिए क्या मामला करना चाहिए जो इफेक्टेड हुआ है।
शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास कहते हैं कि इस मामले को धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है।
आज किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि इंसान मरे या इंसान बचे, हमें ये चीज़ चाहिए है, लिहाजा धर्म से मजहब से ऊपर उठ के इंसानियत की रक्षा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इसलिए कि हिंदू मुसलमान के काम आता है, हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू के काम आता है।
अंत में हम 2 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की याद दिलाना चाहेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग गोरक्षा के नाम पर अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए हैं और वे दिन में गोरक्षा का चोला पहनते हैं जबकि रात में असामाजिक काम करते हैं।
गोरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं लेकिन दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो, 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। और इसलिए स्वयं सेवी संगठन, स्वयं सेवा, ये औरों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होती है, औरों को दबाने के लिए नहीं होती है। एक समर्पण चाहिए, करुणा चाहिए, त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, तब जाकर के सेवा होती है।
मुख्य बात यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में भीड़ तंत्र को हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर इसका चलन हो गया तो फिर आगे चलकर असहमति और विरोध की स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी और धार्मिक आज़ादी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इसमें सरकारों, विशेषकर केंद्र सरकार की बड़ी अहम भूमिका है और उसे भीड़ तंत्र के उन्माद को रोकने के लिए बहुत जल्द ठोस, कड़े और प्रभावी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मॉब लिंचिंग भारत के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात और मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ है। इसी के साथ सरकार को भी और लोगों को भी अफवाहें फैलाने के संबंध में सोशल मीडिया की भूमिका पर भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए और इन पर आने वाली हर बात को सच नहीं मान लेना चाहिए।